नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ई कॉमर्स के कारण रोजगार खत्म हो रहा है, दुकानें खत्म हो रही हैं और धंधा चौपट हो रहा है। अगर 10 साल तक यह सब चला और बाजार के आधे हिस्से पर ई कॉमर्स का प्रभाव बन गया तो समाज में तबाही आ जाएगी। यह सब राहुल गांधी ने नहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है। मीडिया में केवल इसी की चर्चा है कि वाणिज्य मंत्री गोयल अमेज़न कंपनी पर भड़क गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा समय तक ई कॉमर्स के बुरे प्रभावों पर बात की है। इनके कारण सामाजिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, यह सब भी बताया है। यह सब दिल्ली में हुआ है और वह भी एक 5-स्टार होटल में, जहां मंत्री जी ई कॉमर्स सेक्टर से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करने गए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार तो बढ़ रहा है, लेकिन मंत्री जी उत्तेजित हो गए, रिपोर्ट से ही खुद को किनारा कर लिया, रिपोर्ट को नकार दिया। पीयूष गोयल ने कह दिया कि वे इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकते। बताइए, यह सब हुआ है भारत देश में? पीयूष गोयल ने एक पुराना मुहावरा दोहराया, एक होता है झूठ, एक होता है महाझूठ और फिर होता है आंकड़ा। अब इसके बाद क्या रह जाता है सच देखने के लिए? आप मंत्री के सामने कहें कि हुजूर, मोदी राज में रोजगार तो खूब बढ़ रहा है, ई कॉमर्स से कमाल हो रहा है, और मंत्री जी रिपोर्ट उठाकर फेंक दें कि हटाओ सामने से, मुझे पता है बेरोजगारी बढ़ रही है, दुकानें बंद हो रही हैं। समझिए कि कुछ ऐसा ही हो गया। रिपोर्ट उठाकर फेंकी तो नहीं गई, लेकिन जिस तरह से नकारा गया है उसे फेंकना ही कहा जाना चाहिए। अच्छी बात है कि इस रिपोर्ट को नकार कर मंत्री जी ने हमारा समय भी बचा दिया। अभी तक जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती थी जिसमें रोजगार बढ़ने की बात होती है, जिसमें बताया जाता है कि इससे दूसरे सेक्टर के रोजगार पर असर नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग रिसर्च करने लग जाते थे और सरकार खुशी से झूमने लग जाती थी, सारे मंत्री ट्वीट करने लग जाते थे। लेकिन पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार के मंत्री ने रोजगार बढ़ने के दावे करने वाली रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। यह पहली बार, बिल्कुल पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश, जब सरकार के मंत्री अपनी ही तारीफ से चिढ़ गए, भड़क गए, उन्हें सच दिख गया। लगता है अब वे नियमित रूप से रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं। यह वही रिपोर्ट है जिसे अर्नस्ट एंड यंग इंडिया और पहले इंडिया फाउंडेशन ने मिलकर तैयार किया है। नाम ही है पहले इंडिया फाउंडेशन, खुद को थिंक टैंक कहता है, जिसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, वही राजीव कुमार जो नीति आयोग में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, यानी अपने ही लोग तो थे। इन लोगों ने भी कितनी तैयारी की होगी, मंत्री जी आ रहे हैं, मगर मंत्री जी ने तो शुरू में ही इस रिपोर्ट को हवा में उछाल दिया। रिपोर्ट को चमकदार बनाने के लिए कितनी मेहनत है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं, ग्राफिक्स लगाए गए हैं, आंकड़े सजाए गए हैं कि ई कॉमर्स के वेंडर ऑफलाइन दुकानदारों की तुलना में 54% ज्यादा रोजगार देते हैं। एक ई कॉमर्स वेंडर 9 लोगों को रोजगार देता है और ऑफलाइन वेंडर 6 लोगों को। ऑनलाइन वेंडरों के जरिए 1.5 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा हुआ है, लेकिन मंत्री जी ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। कहा, मैं यह नहीं देखना चाहता कि हमारे देश में 10 साल बाद बाजार के आधे हिस्से पर ई कॉमर्स का कब्जा हो गया है, यह चिंता की बात है। क्या हम ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ने देकर समाज में तबाही लाना चाहते हैं? ये सब 10 करोड़ खुदरा दुकानदारों का कारोबार ठप कर देंगे, ऐसा पीयूष गोयल ने कहा है। पीयूष गोयल ने केवल नकारा ही नहीं, बल्कि रिपोर्ट से जुड़े रिसर्चरों को सुना भी दिया, बता दिया उनका काम अच्छा नहीं, आंकड़े उनके विश्वसनीय नहीं। उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग को भी सुनाया, कहा कि मैं नहीं मानता कि उनके लोगों को पता है कि गांव में सड़कों पर क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि अर्नस्ट एंड यंग का आधार क्या है, सोर्स क्या है। जिस तरह से इस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, अगर आप उस भाषण को सुनेंगे तब पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। कॉपीराइट नियमों के कारण मैं उनका वीडियो नहीं दिखा सकता। अब अगर हम लोग, यानी पत्रकार, कुछ पत्रकार इस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते, मीन मेक निकालते, दावों को गलत बताते, तो कहा जाता मंत्री जी ही भावुक हो जाते, सरकार हमला करने लग जाती कि आर्थिक तरक्की के आंकड़े इन लोगों को पसंद नहीं। अगर अर्नस्ट एंड यंग जैसी ग्लोबल सलाहकार कंपनी इतनी कबाड़ रिपोर्ट बनाती है तो फिर सरकार को इस कंपनी से अपना करार तोड़ लेना चाहिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? नवंबर 2023 में आई श्यामलाल यादव की रिपोर्ट देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। बताया है कि भारत सरकार ने अपने कई सारे काम अलग अलग ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म को ठेके पर दिए हैं। इन्हें बिग फोर कहा जाता है। इसी बिग फोर का हिस्सा है अर्नस्ट एंड यंग। पीयूष गोयल ने इसी की एक साझा रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। श्यामलाल यादव ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है अप्रैल 2017 से जून 2022 के बीच इन कंसल्टेंसी कंपनियों को सरकार ने 500 करोड़ का बिजनेस दिया। सोचिए, इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट देने में। यहां तक कि ई गवर्नेंस अवार्ड देने के लिए भी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। साथ में यह किताब भी देख लीजिएगा, मरियाना माजुकाटो रोजी कोलिंगटन की है, द बिग कॉन। इसे पढ़ लेंगे तो इन कंपनियों की कारस्थानियों के बारे में विस्तार से जान लेंगे। सोचिए, अर्नस्ट एंड यंग को भारत सरकार कितना काम देती है। उसकी एक रिपोर्ट को लेकर मंत्री कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि गांव देहात की सच्चाई से ये लोग वाकिफ हैं। मतलब कुछ अब बचा नहीं उस रिपोर्ट में। इसलिए मेरी राय में यह बहुत बड़ी घटना है कि मंत्री ने ही रोजगार के तमाम दावों को नकार दिया। अब मंत्री जी प्रधानमंत्री मोदी के इन दावों को भी नकार दें तो जनता के बीच कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए।
हाल में RBI ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन है। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है।
बताइए, एक तरफ पीयूष गोयल जो रोजगार के आंकड़ों से भरी रिपोर्ट को नकार देते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक अन्य रिपोर्ट के आधार पर 8 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने लग गए। क्या क्या नहीं कहा अपने बयान में कि झूठे नैरेटिव फैलाने वालों की पोल खुल गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे को लेकर आज तक रिसर्च हो रहा है कि उन्होंने ये आंकड़ा कहां से प्राप्त किया, जहां से ये आंकड़ा लिया उन लोगों ने कहां से प्राप्त किया। अब इस दावे को लेकर आर रामकुमार और PC मोहनन ने एक विश्लेषण किया है। हिंदी के अखबारों में तो यह सब नहीं मिलेगा किसी जन्म में। आपको केवल हेडलाइन मिलती है कि प्रधानमंत्री ने कहा है 3 साल में 8 करोड़ नौकरियां पैदा की गई हैं और नौकरियों का पता नहीं चलता। इस बयान को सबने भुला दिया, लेकिन हिंदू अखबार में 21 अगस्त को PC मोहनन और आर रामकुमार ने 1600 पन्नों का रिसर्च आर्टिकल प्रकाशित किया है। बताया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर इंडिया KLEMS का डेटा है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। लेकिन रामकुमार और मोहनन बता रहे हैं कि KLEMS का काम ही नहीं है रोजगार के आंकड़े उपलब्ध करना या जमा करना, और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से रोजगार के आंकड़े जमा करता है। लेकिन उस वक्त रिजर्व बैंक के हवाले से कह दिया गया 3 साल में 8 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। रामकुमार और मोहनन बता रहे हैं कि इंडिया KLEMS प्रोजेक्ट है जो रोजगार का डेटा लेता है PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, लेकिन वह भी तो पूरा आंकड़ा KLEMS को नहीं देता। PLFS यही बताता है कि आबादी के अनुपात में कितने लोगों के पास रोजगार है। मगर 2011 के बाद से तो जनगणना ही नहीं हुई भारत में, फिर आबादी के अनुपात में रोजगार का सटीक आंकड़ा कहां से आ गया। अब आपको खेल समझ में आया? डू यू गेट माई पॉइंट? हम बिल्कुल अपने विषय से नहीं भटके, बस आपको बताया कि अर्नस्ट एंड यंग और पहले इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि ई कॉमर्स से कितना रोजगार बढ़ा है, उसे पीयूष गोयल ने नकार दिया। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक रिपोर्ट को लेकर बयान देने से पहले यह तक नहीं देखा कि जब जनगणना नहीं हुई तो आबादी के अनुपात में कितने लोगों के पास रोजगार है, इस तरह के आंकड़ों पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा किया। अब आते हैं अमेज़न को हड़काने वाली बात पर। हालांकि उन्होंने आज एक बयान दिया है मंत्री जी ने, मगर यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मंत्री जी मूल बात से पलट गए हैं, बस संदर्भ के नाम पर अपने बयान के तेवरों से किनारा करने का प्रयास लगता है। अमेज़न को लेकर पीयूष गोयल ने पहली बार ऐसा नहीं कहा है। 2020 में भी वही वाणिज्य मंत्री थे जो आज हैं, तब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने कहा था कि हम $1 बिलियन का निवेश कर भारत के सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमों को डिजिटाइज करेंगे। इससे नाराज होकर गोयल ने कह दिया वे भले $1 अरब का निवेश कर रहे हैं, अगर उन्हें हर साल $1 अरब का घाटा हुआ तो उसकी भरपाई उन्हें ही करनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि $1 अरब का निवेश कर वे भारत पर कोई एहसान कर रहे हैं। 21 अगस्त को दिल्ली में वाणिज्य मंत्री फिर से अमेज़न को लेकर भड़क गए और फिर से उसी $1 अरब के निवेश की बात की जिसका संकेत उन्होंने 2020 में दिया था। मंत्री जी कह रहे हैं कि $1 अरब का निवेश इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीडेटरी प्राइसिंग के चलते घाटा हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए हो रहा है। मतलब दाम में इतनी कमी कर दो कि बाजार में छोटे दुकानदार उस दाम पर बेच ही ना पाएं और बाहर हो जाएं, समाप्त हो जाएं, मिट जाएं। अमेज़न को लेकर पीयूष गोयल ने जो कहा है कई अखबारों ने उसे ही लेकर हेडलाइन बना दी है। वह अपने आप में आक्रामक है, बयान पावरफुल भी कह सकते हैं, लेकिन अब तो मंत्री जी ने सफाई दे दी है तो उनके इस बयान से पावर निकल गया है, केवल बयान ही फूला हुआ है। अब इस हेडलाइन को देखिए, द हिंदू अखबार की है, बिजनेस स्टैंडर्ड की है, इकोनॉमिक टाइम्स की है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब की हेडलाइन यही है। ज्यादातर अखबारों में अटैक, ब्लास्ट, फ्ले, रेड फ्लैग, अक्यूज, वॉन, टीयर्स इन टू, स्लैम आदि शब्द लिखे हैं, यानी मंत्री जी आक्रोशित होकर बोल रहे थे। गुस्से के अलावा यह भी हेडलाइन का हिस्सा है कि मंत्री जी ने कहा कि अगर ई कॉमर्स में अनियंत्रित विकास हुआ तो लाखों खुदरा दुकानों को नुकसान होगा, नौकरियां जाएंगी। गोयल ने ई कॉमर्स में आई उछाल पर ही सवाल उठा दिए। क्या इन अखबारों ने भी गोयल के बयान को सही संदर्भ में नहीं समझा? भाषण अंग्रेजी में दिया गया, खंडन हिंदी में, वह भी प्राइवेट एजेंसी ANI को। सवाल है कि अगर अमेज़न नियमों का पालन नहीं कर रही है तो मंत्री जी पब्लिक में क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके विभाग ने या सरकार के किसी और विभाग ने अमेज़न को कोई नोटिस दिया है, कोई कार्रवाई की है? 2019 से वाणिज्य मंत्री तो पीयूष गोयल ही हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की और कैसे यह सब होने दिया? आज संदर्भों को समझाते हुए उन्होंने सुबह सफाई दी कि देखिए, हम हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट के स्वागत करता हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट अगर उसका आधार कानून के दायरे के बाहर हो तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो होगी। कल के मेरे वक्तव्य में कुछ लोगों ने यह एहसास करने की कोशिश की कि जैसे अमेज़न के प्रति कोई मैंने कुछ नेगेटिव कहा। मैं समझता हूं अगर मेरी पूरी बात के परिप्रेक्ष्य को देखें तो मेरा कहना यह है कि निवेश आए, लेकिन जो कायदे कानून हैं उनके अंतर्गत आए। और ये पूरी दुनिया में यही है, कोई भी निवेश किसी भी देश में कोई करता है तो उस देश के कानून के दायरे में किया जाता है। 2020 में भी पीयूष गोयल ने ठीक इसी तरह बयान देने के बाद सफाई दी थी, हूबहू शब्दशः वही बातें कहीं जो इस बार यानी 22 अगस्त को उन्होंने अपनी सफाई में कही है। हम हर तरह के निवेश का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर किसी निवेश की बुनियाद कानून का उल्लंघन करती है तो फिर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं मैंने अमेज़न को लेकर नेगेटिव कहा। अगर आप मेरे बयान का परिप्रेक्ष्य देखें तो मैंने कहा है निवेश नियम और कानून के तहत आने चाहिए। अब बताइए, 2020 में भी वही खंडन और हूबहू 2024 में भी वही खंडन। मंत्री जी इतना तो बता दें कि कार्रवाई कब की जाएगी। भारत में अमेज़न राखी के दिन तो नहीं आई है, वो तो भारत में 2013 से है। आखिर 6,000 करोड़ का निवेश कायदे कानून से नहीं हुआ, तब मंत्री जी बताएं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या भारत सरकार अमेजॉन के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगी? करने की बात छोड़ दीजिए, क्या ले पाएगी? पीयूष गोयल ने कहा है कि आज हमारे देश में ई कॉमर्स के कुछ कायदे कानून हैं, उसके दायरे में जो भी निवेश आए उसका स्वागत है, लेकिन उस निवेश की वजह से कोई भारत के छोटे व्यापारी हैं जो खुदरा व्यापार करते हैं, उनको अनफेयर कॉम्पिटिशन क्रिएट ना हो। आखिर वो लोग देश के कोने कोने में खून पसीना एक करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको तो जीरो ब्याज पे पैसा नहीं मिलता है, उनके पास लाखों करोड़ों नहीं हैं, वे छोटी पूंजी से व्यापार करते हैं। पीयूष गोयल ने केवल ई कॉमर्स की वाहवाही वाली रिपोर्ट से किनारा नहीं किया, बल्कि विस्तार से अपने अनुभवों से भी बताया कि इसके कारण कितना नुकसान हो रहा है। दवा की दुकानों का उदाहरण दिया कि वहां चॉकलेट से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और रोजमर्रा की चीजें रखी जा रही हैं, क्योंकि ऐसे आइटम को रखना पड़ता है जिससे 30-40% का रिटर्न मिल सके। इन चीजों से उसके हाथ में कुछ सरप्लस आ जाता है। ई कॉमर्स क्या करता है? छोटे खुदरा दुकानदारों के मुनाफे को खा जाता है, निगल लेता है। मंत्री ने रिपोर्ट के आंकड़ों को नकारना शुरू किया और बताया कि कैसे गली गली से दुकानें गायब होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों नुक्कड़ पर कितने मोबाइल स्टोर नजर आते, 10 साल बाद कितने होंगे, सारे मोबाइल फोन स्टोर कहाँ चले गए, क्या केवल एप्पल और बड़े रिटेल शॉप ही बचेंगे, क्या सिर्फ उनकी एक्सेसरी बच जाएगी। वैसे भी अब फोन की रिपेयर करने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यह चाहते हैं कि आप नया फोन खरीदें और रिपेयर ना करा सकें, इसलिए उपभोक्ता मामलों का विभाग पिछले साल राइट टू रिपेयर लेकर आया। मुझे उम्मीद है आप सब जानते हैं कि आप सप्लायर से कह सकते हैं मेरा फोन रिपेयर करो, नहीं तो उन्हें उपभोक्ता अदालत में ले जाओ। एकदम यही तो बात है। मंत्री जी को अब दिख रहा है कि इन कंपनियों के अरबों डॉलर के निवेश के ऐलान से खुश होने की बात नहीं रही, रोजगार इनसे पैदा नहीं हो रहा, यह मूल सवाल है। इसी तरह का एक बयान केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने जून के महीने में दिया। भारी उद्योग मंत्री ने कह दिया गुजरात में एक सेमीकंडक्टर कंपनी को करीब 16,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने और बदले में 5,000 लोगों को रोजगार देने का उदाहरण दिया और कहा कि एक नौकरी करीब 3,20,00,000 रुपए के बदले मिल रही है। मंत्री जी इसके बाद पलट गए। जो भी है, इन बयानों से लग रहा है कि सरकार को नौकरी की समस्या परेशान करने लगी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। एप्पल के CEO से प्रधानमंत्री मिलते हैं तो फोटो ट्वीट किया जाता है या तस्वीर विकास की तस्वीर बन जाती है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सबसे बड़े रिटेलर कंपनी वॉलमार्ट के CEO से मुलाकात कर रहे थे। वॉलमार्ट 2027 तक भारत में $10 बिलियन प्रतिवर्ष निवेश करने की बात कर रहा था। वॉलमार्ट भी तो ई कॉमर्स है। इधर पीयूष गोयल ई कॉमर्स को खतरनाक बताने लग गए। उन्होंने कहा यह रहेगा दुनिया में, लेकिन कई देशों में ऐसे नियम हैं कि आप सब कुछ अमेजॉन या ई कॉमर्स की वेबसाइट से ऑर्डर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया है उन देशों में ताकि गली नुक्कड़ों से दुकानें खत्म ना हों। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि अगले 10 साल में मैं यह होते नहीं देखना चाहता कि ई कॉमर्स का हमारे बाजार के आधे हिस्से पर कब्जा हो गया है। यह गर्व की बात नहीं है, चिंता की बात है। मंत्री जी को सच्चाई समझ आ गई, ई कॉमर्स के कारण रोजगार बढ़ा या नहीं बढ़ा, मगर उन्हें यह दिखने लग गया है कि गली मोहल्लों की दुकानों का धंधा चौपट हो रहा है, उसका असर रोजगार पर पड़ रहा है, पड़ेगा। मंत्री जी तो यह भी बताने लगे कि ई कॉमर्स के कारण दोस्तियां नहीं हो रही हैं। दोस्ती तभी होगी जब आप कॉफी शॉप में कॉफी पीने जाएंगे। कब सिर्फ अगर कोई दुकान से खरीदता है तो दुकानदार नजर रखता है कि कितनी बार आप कब सिर्फ खरीद रहे हैं और परिवार को बता देता, लेकिन ई कॉमर्स से खरीदने पर पता नहीं चलता है। इन छोटी छोटी दुकानों में बैठे दुकानदारों से जाकर पूछिए कितने साल से ऑनलाइन ई कॉमर्स का दुष्प्रभाव झेल रहे हैं, ई कॉमर्स ने उनका धंधा किस हद तक चौपट कर दिया है, कितने ऐसे उद्यम बंद हो गए। इस बात की चेतावनी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT तो कब से दे रहा है। 2020 की खबर में हमें यह जानकारी मिली। खुदरा व्यापारियों के इस संगठन ने कहा था ई कॉमर्स कंपनियां भारत में विदेशी निवेश इसलिए ला रही हैं ताकि वे अपने घाटे की भरपाई कर पाएं। यह घाटा इसलिए होता है कि स्थानीय दुकानदारों का धंधा बंद कराने के लिए ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर कीमतें घटा देती हैं। तब इन कंपनियों ने ऐसे आरोपों से इनकार किया था। अब वही बात पीयूष गोयल कह रहे हैं। 7 करोड़ खुदरा दुकानदारों का संगठन है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसके अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने चांदनी चौक से टिकट दिया, जीत भी गए। प्रवीण खंडेलवाल ने पीयूष गोयल के इस बयान का समर्थन किया है। इसी संगठन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अर्जी लगाई है। मई 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। इसमें पाया गया है कि ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों ने एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में यह खबर सूत्रों के हवाले से छपी है। लिखा है जल्दी ही यह रिपोर्ट संबंधित पक्षों से साझा की जाएगी। लगता है मंत्री जी को सच्चाई दिखने लगी है। उनका भाषण सुनेंगे तो पता चलेगा राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो पिछले कई साल से यही बात बोल रहे हैं कि छोटे दुकानदारों को खत्म कर उनका बिजनेस चौपट कर कुछ बड़ी कंपनियों का बिजनेस बढ़ाया जा रहा है, इससे भारत की तरक्की नहीं होगी।
नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए, मुझे बता दो। एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अब भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा, या जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसको 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को दिया है।
इस बार जब आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उसमें कहा गया कि रोजगार सृजन का काम प्राइवेट सेक्टर का है, कॉरपोरेट सेक्टर का मुनाफा काफी बढ़ा है, लेकिन इसका फायदा नौकरियों के सृजन को नहीं पहुंचा। आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि 33,000 से अधिक कंपनियों के नमूनों के परिणाम बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच के 3 वर्षों में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र का कर पूर्व लाभ लगभग 4 गुना हो गया। इसके अलावा अखबारों की सुर्खियों ने हमें बताया, कॉरपोरेट मुनाफे और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वित्त वर्ष 24 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बिजनेस लाइन ने बताया कि निफ्टी 500 यूनिवर्स के लिए कॉरपोरेट लाभ पिछले वित्त वर्ष में 30% बढ़कर 14.11 लाख करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 23 में 10.88 लाख करोड़ था। लेकिन इस अनुपात में लोग वहां काम पर नहीं रखे गए, अच्छी सैलरी पर नहीं रखे गए। काम पर रखना और श्रमिक मुआवजे में वृद्धि करना कंपनियों के हित में है। यहां सरकार निजी क्षेत्र को उपदेश दे रही है कि 1 साल में 30% आपका मुनाफा बढ़ा, अब आपको नौकरियां देनी चाहिए। मगर कॉरपोरेट से फिर भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आज ही बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है कि कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरियां घटी हैं, आईटी सेक्टर में भर्तियां हो नहीं रही। पीयूष गोयल चाहते हैं कि ई कॉमर्स के असर को लेकर बहस हो, मगर इस असर का एहसास होने में बहुत वक्त लग गया और बर्बादी का विस्तार दूर दूर तक फैल गया। मंत्री जी ने शायद ठीक कहा है, अब और 10 साल यह चला तो समाज में तबाही आ जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।